का था, रूह वही रूप नया।
मैं अब्दुल और जुम्मन बाजार में खरीदारी कर रहे थे कि इतने में ही भगदड़ मच गई। कुछ स्थानीय लड़के गाड़ियों में आकर मुनादी कर रहे थे, भागो, हिंदुस्तानी फौजियों ने हमला कर दिया है। जान बचाकर सभी वहां से भागे और बंकरों में छिपने लगे। मेरे साथ बंकर में करीब 10 लोग और थे। करीम चाचा बंकर के बाहर खड़े होकर हिंदुस्तानी फौजियों को गालियां बक रहे थे। उनको लेने मैं बंकर से बाहर गया, देखते ही देखते एक जोरदार धमाका, पूरे आसमान में धूल के बादल छा गए। सामने बने सारे मकान पल भर में ही ढेर। मैंने करीम चाचा का हाथ पकड़ा और उन्हें बंकर में वापस खींच लिया। शानो बेगम और अब्दुल भाई की बेटी शकीना भी हमारे साथ बंकर में थी। उसने फातिमा चाची से पूछा, मेरे अम्मी और अब्बू कब आएंगे? यह सुनते ही मेरा दिमाग खुल गया। अहमद भाई और शानो बेगम तो बंकर में थे ही नहीं। मेरे माथे पर पसीना चला। बंकर में बैठा बैठा मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जुम्मन, करीम चाचा और फातिमा चाची भी सबकी सलामती के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इतने में दो बंदूकधारी आए और हमें बंकर से बाहर आने को कहा। उन्होंने हमसे कहा कि हिंदुस्तानी फौजियों को हमने खदेड़ दिया है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 30 साल से ठीक ऐसा ही महीने में 3-4 बार हो ही जाता है। 30 साल पहले मैं इस गांव में आया था। 30 साल पहले मैं चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने आया था। सुबह 8 बजे तैयार होकर हम सब लोग घूमने निकले थे। पहाड़ों पर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बहुत से सैलानी वहां आए हुए थे। इतने में ही आतंकवादियों ने हमला कर दिया और मेरे परिवार सहित सभी लोगों को मार डाला। सभी लोगों को मारने के बाद उनकी लाशों को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। गोली लगने से पहले ही मैं नीचे गिर गया था। आतंकवादियों ने मुझे मरा हुआ समझा और वहां से चले गए। उसके बाद जान बचाते बचाते मैं सरहद के इस पार पहुंच गया और इस गांव के लोगों ने मेरी जान बचाई। तब से आज तक मैं यहीं पर हूं। अपने परिवार को खोने के बाद मैं गुमसुम रहने लगा था और वापस कभी अपने घर जाने की सोचा भी नहीं। जाता भी तो किसके लिए? सभी तो कोई था ही नहीं वहां जो मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। अब्दुल, करीम चाचा, फातिमा चाची, नुसरत, जुम्मन, अब यही मेरा परिवार था। और यहां पर भी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उनका मकसद था हिंदुस्तानी फौजियों के नाम पर गांव के लोगों में दहशत फैलाना और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना। बंकर से बाहर आकर मैंने देखा कि शानो बेगम, अब्दुल भाई, मेरे दोस्त रहमान, गफूर, इन सबकी लाशें दूसरी और भी लाशों के ढेर के साथ जमीन पर पड़ी हुई थी। लाशों को देखकर मैं उनके पास दौड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मैं आतंकवादियों पर चिल्लाने लगा, तुम कातिल हो, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। एक आतंकवादी ने मुझे गाली दी और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या मजहब है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम दिलावर है और इंसानियत मेरा मजहब है। ये सभी लाशें जो है ना, ये मेरे अपनों की लाशें हैं। तुमने बेगुनाहों को मारा है, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। आतंकवादियों ने मुझसे कहा, तुम्हारे भाइयों को हमने नहीं मारा, हमने तो इन हिंदुस्तानी फौजियों को मारकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारे मकानों को बॉम्ब से उड़ाया है, लेकिन तुम्हें पता है हमने उनको भी नहीं बख्शा, लगा दिया ठिकाने उनको। उसके बाद आतंकवादी वहां से चले गए। दो हिंदुस्तानी फौजियों की लाशें जमीन पे पड़ी थी। तभी मैंने एक फौजी के मुंह के पास से जमीन की धूल उड़ती देखी। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने उसके मुंह पर पानी छिड़का तो उसे तुरंत होश आ गया। मैंने उसको पानी पिलाया। उसके होश में आने पर मेरे चेहरे पर एक खुशी सी छा गई। हिंदुस्तानी फौजी को देख के, लेकिन बाकी सभी लोग उसको मारने के लिए दौड़े। मैंने चेतावनी देते हुए उन्हें रोका और कहा कि सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? ये एक हिंदुस्तानी फौजी है, यह हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन तो ये दहशत फैलाने वाले आतंकवादी हैं। करीम चाचा बोले, दिलावर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इसी की वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ी है और आगे भी खतरे में पड़ सकती है। जल्दी से इसे मारो और किस्सा खत्म करो। एक बार फिर लोग उसको मारने दौड़े, लेकिन मैंने उन्हें खुदा का वास्ता देकर रोक दिया। मैंने सबसे कहा कि तुम सभी कायर हो, अरे हिम्मत है तो उन आतंकवादियों को क्यों नहीं मारते जो कि निहत थे व मजबूरों की हत्या करते हैं? तुम सब के सब बुजदिल हो, क्या कुरान में यही लिखा हुआ है कि निहत्थे व मजबूरों की हत्या कर दो? अरे तीन चार दहशत गर्दों के सामने तुम्हारी जुबान पर ताले लग जाते हैं और अब तुम्हारे अंदर मर्दानगी आ गई है। दहशत गर्दों के आने पर कहां चली जाती है तुम्हारी यह मर्दानगी? शर्म करो, शर्म। और अगर फिर भी तुम इसको मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। इतना सुनते ही सबका सिर शर्म से झुक गया। मैंने हिंदुस्तानी फौजी से उसके बारे में पूछा। उसने बताया, भाई हमने तुम्हारे गांव पे कोई हमला नहीं किया। रात को अपनी ड्यूटी करते हुए हम रास्ता भटक गए थे और तुम्हारे गांव आ पहुंचे। उसके बाद रास्ता बतलाने के बहाने एक लड़का हमें पास के जंगल में ले जाने लगा। हमें उस लड़के पर शक हुआ और हम वहां से भाग निकले। उस लड़के ने आतंकवादियों को तुरंत सूचना दे दी। आतंकवादियों ने हमारा पीछा किया और मेरे एक साथी को मार गिराया। तुम्हें पता है इसके परिवार में इसके माता पिता, इसकी पत्नी और एक बच्ची है। सामने खड़ी शकीना को देखकर बोला, बस बिल्कुल ऐसी ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची है मेरे इस भाई की। अब इसके परिवार में इसके सिवा कमाने वाला कोई भी नहीं। इसके बाद उस फौजी की आंखें भर आई। उसकी बात सुनकर मैं चिल्ला के बोला, सुन ली हकीकत सबने? यही हकीकत है करीम चाचा। इस हिंदुस्तानी फौजी के आंसू झूठे नहीं हैं। आखिर तुम्हारा तजुर्बा भी तो कुछ ना कुछ कहता होगा। तभी फातिमा चाची और नुसरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद करीम चाचा ने कहा, ठीक है तो बताओ कि फिर अब करना क्या है। मैंने कहा कि हमें आज रात ही इसको सरहद पर सुरक्षित छोड़कर आना है। करीम चाचा ने कहा, ठीक है, पर जुम्मन बोला कि करोगे कैसे? दिन में तो यह मुमकिन नहीं है और रात के समय बहुत खतरा है। आखिर किस तरह से हम इसको सरहद पे छोड़कर आएंगे? फातिमा चाची बोले कि ये सिकंदर किस दिन काम आएगा भाई, उसकी पुलिस वालों से बहुत जान पहचान है। हर सुबह उसकी गाड़ी फौजियों का सामान लेकर सरहद पर जाती है। रात के अंधेरा होने पर आसानी से हमारा काम हो जाएगा और मेरा कहा वो टालेगा नहीं। फातिमा चाची ने जुम्मन को संदेशा देकर सिकंदर के पास भेजा। शाम को सिकंदर करीम चाचा के घर आया। मैंने उसे सारी बात समझाई। पहले तो उसने जान का खतरा बताते हुए साफ साफ मना कर दिया, परंतु फातिमा चाची ने उसे मना लिया। पहली रात को ही हमने हिंदुस्तानी फौजी को सिकंदर की गाड़ी में खाना पीना सब कुछ देकर बैठा दिया। सुबह होते ही मैं, जुम्मन और सिकंदर गाड़ी लेकर सरहद पर पहुंच गए। सिकंदर ने हमें अपने फौजी मित्रों से मिलवाया। वहां शाम तक हम फौजियों के पास ही रहे। वहां के फौजियों के साथ हमने खूब बातें की। शाम होते ही गाड़ियों में सारा सामान चढ़ाकर वहां से निकल पड़े और रात के अंधेरे में दूर सरहद पर गाड़ी रोककर हमने हिंदुस्तानी फौजी को उतार दिया। हिंदुस्तानी फौजी ने सबसे गले मिलकर विदा ली और हमको धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने सरहद के उस पार कदम रखा। उसके सरहद पार करने पर मैं कुछ दूर तक नम आंखों से उसे देखता रहा। मन में एक खुशी का भाव था और आंखों में आंसू। हिंदुस्तानी फौजी को सरहद के उस पार विदा कर दिया, पर मैं सरहद के इस पार ही रह गया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विकास कुमार शर्मा की लिखी कहानी दहशत। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।